तो आप जानना चाहते हैं कि मन पर नियंत्रण कैसे करें और मन मानता क्यों नहीं है, सब कुछ जानते हुए भी मन मानता क्यों नहीं है। सबसे पहले तो अपने विज्ञान के बारे में हमको समझना चाहिए, नहीं तो मन नियंत्रण में कभी नहीं आएगा। यदि मैं मन को नियंत्रण में करना चाहता हूं तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि मन के कारण मैं परेशान हूं, जिसको हम आमतौर पर कह देते हैं मेरा मन बड़ा परेशान है, जबकि ये स्टेटमेंट, ये वक्तव्य आपका बिल्कुल गलत है। सत्य मेरे बारे में ये है कि मैं मन के कारण परेशान हूं। मन के कारण परेशान क्यों हूं, इसका विज्ञान ये है सिंपल सा महाराज जी कह रहे हैं कि मन के अंदर जितनी भी आपके अंदर तमन्नाएं या इच्छाएं उठ रही हैं वो पांच विकार से प्रेरित है, या यूं कहिए कि उनका स्रोत पांच विकार है, जिसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये पांच विकार मन में है क्यों, पांच विकार तो ये पांच तत्वों के हैं, काम, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो मन के अंदर ये विकार कैसे आ रहे हैं। उसका मूल कारण यह है कि मैं अपने आप को देह करके जान रहा हूं, कि मैं शरीर हूं, अपना नाम और रूप मुझे पूरी तरह से ध्यान में रहता है, और दूसरे के बारे में भी मेरा यही निर्णय होता है कि ये भी देह है, उनसे प्रेम, उनसे दुश्मनी, उनसे ईर्ष्या, उनसे द्वेष, सब मैं ये देह करके ही करता हूं, और ये मेरा स्वभाव बन गया है, या यूं कहिए कि मेरा ये ऐसा नेचुरल निश्चय बन गया है कि इससे मैं एक मिनट भी दिन भर में मुक्त नहीं होता। तो सत्पुरुष इस देह के विज्ञान के बारे में वो कहते हैं कि ये देह पांच तत्व से बनी है, और महाराज जी कह रहे हैं देह करके संसार है, देह और संसार एक ही चीज है, जैसी जिसकी देह है वैसा ही उसका संसार है, ये सारी बातें महाराज जी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही मैं अपने आप को देह समझता हूं तो मैं इस देह और संसार के बंधन में एक साथ आ जाता हूं। इसलिए जिस मटेरियल की देह बनी है उसी मटेरियल का संसार बना हुआ है, तो पांच विकार संसार में भी फैले हुए हैं, पांच विकार मेरी देह में भी फैले हुए हैं, तो इसीलिए पूरी की पूरी मेरा जीवन, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरों को, ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये बहुत खराब आदमी है, तो चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, दोनों ही हालतों में वो पांच विकार से ग्रसित है, इससे ऊपर उसका जीवन कोई है ही नहीं, इसको नेचुरल जीवन कहते हैं। पक्षियों में भी कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है, जानवरों में भी कोई अच्छा होता है बुरा होता है, गाय कितनी सीधी होती है, खूब दूध देती है, घास खाती है, कोई एक लीटर दूध भी नहीं देती और सींग मारती है, तो ये स्वाभाविक रूप में स्वभाव है लोगों का, सारे जीवों का, और उस स्वभाव के वशीभूत होकर वो संसार में जीवन, शारीरिक जीवन व्यतीत कर रहा है। देखिए ये बोध किसी को भी नहीं है कि ये पांच विकार हैं और ये पांच विकारों से मैंने मुक्त होना है, मेरी जो परेशानी का कारण है वो ये पांच विकार ही हैं। हम मन को और देह को अलग करके देखते हैं, लेकिन अध्यात्म विद्या कहती है कि ये स्थूल शरीर, ये जो देह है, और सूक्ष्म शरीर ये मन है। तो जो कुछ भी हम देह को मानकर या देह को अपना स्वरूप मानकर जो कुछ भी कर्म करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, वो सारे के सारे उसके संस्कार हमारे मन में इकट्ठे हो जाते हैं। वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। अब मैं इस देह और मन के बारे में तो कुछ कुछ जानता हूं, सारी चीज तो नहीं जानता, लेकिन अपने बारे में पूरी तरह से कंफ्यूज रहता हूं, 100% कंफ्यूज रहता हूं। जबकि महाराज जी की कोई वाणी पढ़ लो, चाहे संताविलास पढ़ लो, चाहे गीता पढ़ लो आप, चाहे महर्षि रमण की का वार्तालाप पढ़ लो आप, ये लोग बिल्कुल क्लियर करके कह रहे हैं, तीनों चीजों को अलग करके कह रहे हैं। वो कहते हैं तू जीव है जो दुखी है, और तेरे दुख का कारण अपना ही मन और अपना ही तन है, या यूं कह ले कि अपना ही संसार है। बाहर नहीं है दुख का कारण कोई भी। ये भी हमारा कंफ्यूजन है कि बाहर संसार में दुख है, संसार में कोई दुख नहीं है। जो कुछ भी दुख है मेरी देह के अंदर है, या यूं कह लीजिए मेरे मन के अंदर है। ये पांच विकारों का क्लेश है जो हर जीव भोग रहा है, और इसीलिए सांसारिक विकास जिसको बोलते हैं, जिसको डेवलपमेंट आप कहते हो, बड़े खुश होते हो, मैं मेरे बच्चे कितने डेवलप हो गए, मेरा देश कितना डेवलप हो गया, मेरा परिवार कितना डेवलप हो गया, और महाराज जी क्या कह रहे हैं प्रेमी, ये अंधी दौड़ है। जितना तू विकसित होता जाएगा उतनी तेरे नाश के दिन नजदीक आते चले जाएंगे, तेरी बर्बादी का समय नजदीक आता चला जाएगा। इसका नाम उन्होंने स्वार्थ दिया, ये स्वार्थ जीवन है। जो संसार के सुख भोगने को लक्ष्य लेकर हम जो जीवन व्यतीत करते हैं इसको स्वार्थ जीवन कहते हैं, और स्वार्थ जीवन पांच विकार से युक्त होता है। इसलिए जब इस मनुष्य का विकास होगा तो इसकी मौत का वक्त बड़ा नजदीक आ जाएगा, या यूं कहिए इसके सर्वनाश का वक्त उतना ही नजदीक आता चला जाएगा। इसलिए महाजी लिख रहे हैं संताविलास में कि जैसे जैसे मनुष्य का स्वार्थ बढ़ता है वैसे ही वैसे वो दूसरों पर विश्वास करना बंद कर देता है, उसका विश्वास कम होता चला जाता है, और फिर एक दूसरे का हक हासिल करने की खातिर आपस में लड़ते हैं, और जो उन्नति इन्होंने बड़े लंबे समय में की थी वो थोड़े ही दिन में उसका सर्वनाश हो जाता है। अब सत्पुरुष की इस बात को संसारी व्यक्ति कभी सुने, सुनना चाहेगा, कभी सुनना नहीं चाहेगा, सुना भी दोगे समझेगा ही नहीं, कहेगा पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं। और आमतौर पर सत्संगियों का भी यही हाल होता है, आमतौर पर कोई कोई सत्संगी होश में होता है, गुरु की बात को बड़ी गहराई से पढ़ने की समझने की कोशिश कर रहा है, गुरु कह क्या रहा है ये। इसीलिए महाराज जी बार बार ये बात संतविलास में लिख रहे हैं कि इन सत विचारों पर गहरा मनन करना चाहिए, गहरी गौर करनी चाहिए। ये वर्ड्स देखो संतविलास में कितनी जगह लिखे हुए हैं, और हम यही चीज स्लिप कर जाते हैं। हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि मेरी सब बात समझ में आ गई, महाराज जी क्या कह रहे हैं, फिर हम जैसे कोई रट लेता है ना, हाँ हमको पता है प्रकृति में तीन दोष हैं, तीन गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, हमें पता है पृथ्वी शरीर जो है पांच तत्वों का बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मुझे ये भी पता है पांच तत्वों के पांच विकार होते हैं, सारी चीज पता हो गई आपको, और आप ब्लैंक हैं। क्यों? क्योंकि आपकी चाल नहीं बदली, आपकी चाल वैसी ही चल रही है जैसे कि आप संस्कार लेके पैदा हुए थे, या संसार में जो संस्कार आपने सीखे जो बनाए। तो विचार करो, यदि किसी व्यक्ति को पता लग जाए कि मेरी देह के अंदर पांच क्रॉनिक डिजीज है और ये मेरा सर्वनाश कर देंगी, जिंदगी बर्बाद कर देंगी, तो वो व्यक्ति उनके इलाज की सोचेगा या गंभीरता से नहीं सोचेगा? जब विचार करके देखो। तो ये ऐसी बीमारी है जो सतपुरुष बार बार कह रहे हैं, ये जिंदगी ही खत्म कर देती है तेरी, बर्बाद कर देती है। किस रूप में बर्बाद करती है? कि मनुष्य जन्म जो इन विकारों से मुक्ति के लिए मिला था वही छीन लिया जाता था तुझे, तुझे तो पशु पक्षी का शरीर दे दिया जाता है यदि तूने इस देह का मिसयूज किया तो। अब बताइए मुझे, इस बात का होश है हमको? क्या इस गंभीरता से हम सोचते हैं? दो चार अच्छी बातें सीख लिए, बस कर रहे हैं, चल रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, होश ही नहीं। ये मसला बहुत गंभीर है, इतना सरल नहीं है या इतना हल्के से लेने वाला नहीं है जैसा हम लेते हैं, हमारे हमने स्वभाव बना रखा है। इसके लिए गंभीर प्रयास की जरूरत है। तो इसीलिए गीता में लिखा गया कि इस मार्ग पर कोई कोई चलता है। यदि मैं अपने आप को चलने वाला कहता हूं तो वो कोई कोई में शामिल तो होना चाहिए मुझे। तो विज्ञान तो लंबा चौड़ा नहीं है, बात तो इतनी ही है ना कि मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं दिन भर जो व्यवहार करता हूं देह करके ही करता हूं, मैं समझता हूं कि मैं देह हूं। दुनिया का व्यवहार करते समय मुझे कभी ख्याल नहीं आता कि मैं कौन हूं। ईशो की तो बात छोड़ दो, आप अपने ही बारे में ख्याल नहीं आता मैं कौन हूं। अपने को तो जानते हो, ईशो को तो नहीं जानते। अपनी परेशानी को भी जानते हो, मैं परेशान हो रहा हूं। अब जब एनालिसिस हो रहा है तब आप इस बात को सोच रहे हो क्या, मन मुझे परेशान कर रहा है और मन मेरा ही है, मेरे पड़ोसी का मन तो नहीं है, मन मेरा है। तो अपने ही मन के कारण मैं परेशान हो रहा हूं, सारी जिंदगी यही समझता रहता हूं, दुनिया वाले भी यही सिखाते रहते हैं, संसार के कारण तो परेशान है, तेरी देह तेरे काबू में नहीं है, संसार तेरे काबू में आ जाएगा? जरा विचार करके तो देख, इसका मतलब तू तो परेशानी से कभी मुक्त हो ही नहीं सकेगा। तेरी जिंदगी में वो दिन कभी नहीं आएगा जब तू परेशानी से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि तुझको समझ ही कुछ नहीं, एक अनाड़ी की तरह तो जी रहा है, बिल्कुल दूसरों को संभालने की कोशिश कर रहा है, खुद अपना होश नहीं। तो इसीलिए जब तक आपको ये बात गहराई से समझ नहीं आती है और हर वक्त इस बात का ध्यान नहीं रहता कि मन मेरा है भाई, ये तन मेरा है और अपनी ही चीजों के कारण मैं परेशान हूं, और इस मन के संतोष की जहां तक बात आती है, मन के धैर्य की जहां तक बात आती है तो वाणी बड़ा स्पष्ट कर रही है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। गुरु बना लिया, गुरु का निर्णय हम याद ही नहीं रखते। बच्चों के लिए भी ये ख्वाब पाल रहे हैं कि अच्छा जीवन इनका बीतेगा, संसार में धैर्य से ये जीवन चलाएंगे। मैं स्कूल एजुकेशन के बारे में ज्यादा गंभीर हूं, उनकी आध्यात्मिक एजुकेशन के बारे में उतना गंभीर नहीं हूं। हो सकता है गंभीर हूं लेकिन उसकी एजुकेशन के मुकाबले में 10% गंभीरता होगी यदि हुई तो, क्योंकि निश्चय ये बैठा हुआ है कि संसार में ये खुशहाल रहेंगे। तो कितना स्पष्ट निर्णय है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर, केवल ईश्वर का नाम ईश्वर की भक्ति ही इस बेचैनी का हरण कर सकती है। अब जो संसार में ही तो मन लगा हुआ है ना हमारा, संसार में कोई वस्तु है ही नहीं तो मन की बेचैनी खत्म हो जाएगी अभी आपकी? क्या इस तरीके से हम सोचते हैं? महा जी का मार्गदर्शन तो यही कर रहा है ना, समता ब्लास तो यही कर रही है, वाणी तो यही कर रही है, गीता भी यही कर रही है। कोई ऋषि ऐसा नहीं हुआ धरती पर जो ये बात ना कह रहा हूं, लेकिन हम कितने होश में, कितने सिंसियर हैं अपने जीवन के प्रति, विचार करके देखो। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपने आप को सिंसियर समझते, लापरवाह तो खैर उनकी बात ही नहीं हो रही है, हम कितने सिंसियर हैं। तो इसीलिए मैं अपने साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा हूं, मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बात के लिए। मैं जीव हूं, जीव उसे कहते हैं जिसमें होश होता है, जो जानता है, इसी का नाम बुद्धि है, नोइंग फैकल्टी है ये। जो जानता है वही दुखी हो रहा है, देह तो जड़ है, ना ये जानती है ना ये दुखी होती है, और मैं अपने आप को देह समझ के कह रहा हूं मैं दुखी होता हूं। अब ये जड़ बुद्धि जीव है, इसको कहते हैं जड़ बुद्धि जीव, इसी को मूर्ख जीव कहते हैं। महाजी ने इसके वर्ड दो यूज किए समतावलास में ज्यादातर, जड़ बुद्धि जीव और मूर्ख, इसी को महाजी ने पशु प्रवृत्ति कहा है। हम पशु प्रवृत्ति लेकर जीते हैं संसार में, क्योंकि पशु को इससे ऊपर कोई होश नहीं होता। तो जीव जब अपने बारे में पहले कॉन्शियस होता है, बात कह देते हैं अरे भाई देह मरेगी, ये बच जाएगा, ये अगला जन्म मिलेगा, सब बातें कर लेते हैं केवल। जब अपने बारे में सोचने की बात आती है तब ये होश नहीं आता, अरे जब मैंने मरना ही नहीं है तो मैं देह कैसा। फिर अपने प्रति सोचने में गंभीर होते हैं क्या हम? बात करने में तो हम कर लेंगे सब कुछ, बड़ी चतुराई से कर लेंगे, बड़ी करेक्ट कर लेंगे, लेकिन निर्णय के मामले में हम सबसे पीछे पड़ेंगे। एकांत में बैठे कभी सोच के देखना कि क्या मेरी ये स्थिति है, तो बेसिक्स में ही मैं फेल हो जाता हूं तो आगे कहां बढ़ना है। मैंने मुझे होश ही नहीं रहता कि मेरी मौत नहीं है, मौत इस देह की है, और मैं वो हूं जो बिना देह के रह नहीं सकता। जब तक मेरे अंदर जीव भाव है, जब तक मेरे अंदर कर्तापन है, देह हमेशा मेरे साथ बनी रहेगी। तो कर्तापन ही देह की रचना करता है, तो देह ये पांच तत्व की हमेशा मेरे साथ रहेगी। इसलिए जिसको मौत कहते हैं वो एक सेकंड की भी इस जीव की मौत नहीं है, अर्थात एक सेकंड के लिए भी जीव बिना देह के नहीं रहता। देह तो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, देह आपकी सिंगल सेल बॉडी भी हो सकती है, वो फिर बड़ी हो जाएगी। तो सवाल ये है कि मनुष्य जन्म जब मुझे मिला है तो इस मनुष्य जन्म के साथ साथ सत्पुरुष भी तो संसार में आए हैं, फिर शास्त्र भी तो उनको मिले हैं या नहीं मिले, हर चीज साथ मिली है ना। अब ये मुझ पर निर्भर करता है, जिस चीज में अपना कल्याण समझता हूं उस चीज को, उस चीज के लिए मैं पुरुषार्थ करूं, और जिस चीज में अपना अपनी बर्बादी समझता हूं उससे मुक्त होने की कोशिश करूं। बुद्धि का मतलब यही तो हुआ। तो जब मैंने गुरु बनाया तो गंभीरता से सोचो तो सही, मैंने गुरु क्यों बनाया है? इस पर मैं सोच रहा हूं मैं कौन हूं, इस पर गुरु के बारे में सोचो, मैं गुरु कौन है? मैं मन और देह के बंधन में हूं ये मैं जान गया अपने बारे में, और गुरु मन देह से मुक्त है। जो मन देह से मुक्त है वो फिर कौन हुआ? उसके अंदर कर्तापन नहीं है, इसका मतलब वो देह से भी मुक्त है। जब तक कर्तापन है तब तक मैं देह के बंधन में हूं, जब कर्तापन नहीं तो मैं देह के बंधन में नहीं। इसलिए महर्षि रमण कह रहे हैं कि सत्पुरुष के लिए उसकी देह इस प्रकार है जैसे कोई पथिक जा रहा हो, उसके कंधे पे तौलिया लटकी हो, और कहीं गिर जाए उसको पता ही नहीं चला कि कहां गिर गई। तो सत्पुरुष की देह कहीं भी लुढ़क गया है, उससे कोई वास्ता ही नहीं। तो सत्पुरुष में मुझ में एक ही अंतर है, मैं अपने ही मन और अपनी देह के बंधन में हूं जो हमेशा मुझे परेशान करती है, हमेशा मुझको पांच विकार से ग्रस्त रखती है। और सत्पुरुष मन और देह के बंधन में नहीं है, इसलिए वो पांच विकारों से मुक्त है। तो विकार रहित कौन होता है? ईश्वर होता है विकार रहित, इसलिए सत्पुरुष ईश्वर है। तो गुरु का जीवन यही तो आदर्श पेश कर रहा है हमारे आगे कि देह के रहते रहते देह से मुक्ति मिल जाती है, मरने के बाद नहीं, देह के रहते रहते देह से मुक्ति मिल जाती है। तो गुरु जब मैंने धारण किया है तो इन सारी बातों पर मुझको विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो अब बताइए मुझे कि जीव अपने मन और अपने तन के बंधन में, या और मोटी बात करना चाहें तो कहते संसार के बंधन में, और गुरु मन देह और संसार के बंधन से मुक्त है। इस मुक्ति का नाम ही शांति है, इस मुक्ति का नाम ही आनंद है, इसी का नाम महाराज जी ने परम सुख लिखा है। सुख नहीं लिखा इसका, परम सुख। परम सुख उसे कहते हैं जो कभी भी दुख में बदलता नहीं, जो स्थायी होता है। मुझे चाहिए यही, जिससे पूछो क्या चाहिए तुमको, ऐसा सुख चाहिए जो कभी खत्म नहीं होने वाला। जब खत्म नहीं होगा इसका मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो सारी सृष्टि में वो तत्व कौन सा है जिसमें परिवर्तन नहीं है, जो खत्म नहीं होता? उस अनंत सुख का नाम ही ईश्वर है। तो इसका मतलब हर जीव को ईश्वर चाहिए। अब विचार करो, जब तक अपने बारे में उसको होश नहीं है, अपने मन देह संसार के विज्ञान के बारे में उसको होश नहीं है, वो विज्ञान नहीं जो साइंटिस्ट पढ़ाते हैं, वो विज्ञान जो गुरु पढ़ाता है, तो ये जीव कभी इस बंधन से मुक्त हो पाएगा? आपकी बुद्धि क्या कहती है? इस बात का होश ही जिसको नहीं है, बड़े सत्संग सुनता है, वो कभी इस बंधन से मुक्त हो पाएगा? वो एक बात का और अहंकारी हो जाएगा, मैं बड़ा सत्संगी, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, किसी को धोखा नहीं देता हूं, ये सब चीज उसके अहंकार का पोषण करेंगे। तो ये सारी क्लैरिटी जब तक आपके अंदर नहीं है, आप अपने मन का इलाज क्या करोगे? इलाज तुमने अपना करना है, मन का क्या इलाज करोगे? तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारा अविवेक ही तुम्हारी बीमारी का कारण है। तो ये जो गहरा मोह है अपनी देह और अपने मन के प्रति मेरे अंदर, और देह करके संसार के प्रति, ये गहरा मोह कैसे भंग होगा? तो ये जो विवेक है, या यूं कहिए ये जो एनालिसिस है, ब्रीफ एनालिसिस, इसकी क्लैरिटी हर वक्त अंदर बनी रहनी चाहिए, इसके बारे में हर वक्त होश में रहना चाहिए, तब आप हर करनी के प्रति अलर्ट रहोगे। मुंह से बात एक सेंटेंस में निकलेगा तो होश में रहोगे, मैं बोल क्या रहा हूं, इसके पीछे मेरा भाव क्या है। तब धीरे धीरे आपके अंदर इस होश वाले संस्कार बनेंगे मन के अंदर। तो आपके अंदर जो डिजायर होगी ना, इंटेंस डिजायर, वो होगी मेरा एक दिन भी बर्बाद नहीं जाना चाहिए, मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है, मैं अपना इलाज करने के लिए आया हूं और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है इस संसार में। तो इलाज उसका क्या है? यही तो है ना, कि जो चीजें विकारों को बढ़ाती हैं उन पर संयम करो, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। मौज उड़ाता रहूं और कहता रहूं धीरे धीरे कर लूंगा। अरे जो बीमार होता है वो पूरा इलाज करने की सोचता है, वो धीरे धीरे रोग ठीक कर लूंगा ऐसा कोई पेशेंट नहीं सोचता। जो इलाज मेरे हाथ में है वो तो मुझे तुरंत करना चाहिए, क्योंकि मदहोशी है मेरे अंदर, इसलिए टालता रहता हूं आगे को। तो सबसे पहला जो विचार है, जो हर समय धारण करने की चीज है, मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं जीव हूं। जो दुखी हो रहा है, ना मन दुखी हो रहा है ना तन दुखी हो रहा है, ये दोनों जड़ हैं। मैं दुखी हो रहा हूं, अब जिसके कारण दुखी हो रहा हूं उस कारण से मैंने निवृत्ति प्राप्त करनी। तो मन से तन से लड़कर आप दुखी होना बंद कर दोगे? कभी सारी जिंदगी लड़ते रहो तब भी ये पीछा नहीं छोड़ेंगे आप, तो रास्ता क्या बचा? एक ही रास्ता बचा कि मैं मन और तन का संग छोड़कर ईश्वर का संग शुरू करूं। वो इस देह के अंदर मौजूद है। जिस प्रकार मेरा बिगड़ा मन मेरी देह के अंदर मौजूद है, उसी प्रकार वो ईश्वर भी मेरी देह के अंदर ही मौजूद है। फिर जाना कहाँ है आपने? मन तो आपकी सुनता नहीं है, ईश्वर तो हर बात सुनता है आपकी। मैं तो उसका अंश ही हूं, जैसे पुत्र मां का अंश होता है ऐसे मैं तो अंश हूं ईश्वर का। वो तो तैयार बैठा हुआ है, बस वो ये प्रतीक्षा कर रहा है कि मेरी बात मानने को तैयार है या नहीं, तब सहायता करता है। सतगुरु तो अंतरम है, पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाट उगा। तो ये समझ तो सही, गुरु से ही मेरा कल्याण है। गुरु की जिस बात का भी उल्लंघन करूंगा मेरी बर्बादी है, तब कहा जाएगा तो गुरु से तुझे प्रेम है, तब तू समझेगा गुरु कल्याण स्वरूप है। अभी तो सांसारिक डेवलपमेंट के अंदर तेरा ध्यान लगा हुआ है, अपना डेवलपमेंट किया अब अपना छोड़ के बच्चों के डेवलपमेंट पे आ गया, वृत्ति तेरी वहीं खड़ी हुई, तेरा निश्चय कहां बदला? तो इसीलिए जब ये जीव बड़ा स्पष्ट ये विचार उसके अंदर बना रहता है, जब इस जीव के अंदर कि मैं अपने ही मन अपने ही तन के बंधन में हूं, सारा संसार जो कुछ भी मेरे बाहर दिखाई पड़ रहा है ये मेरे अपने मन की उपज है। सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल, ये ऐसी वाणी नहीं हल्के ढंग से पढ़ ली जाती, हम तो केवल पढ़ लेते हैं सुन लेते हैं। और महा जी क्या लिख रहे हैं वाणी के अंत में? वाणी निश्चयात्मक बुद्धि प्रदान करती है, जिसने वाणी पर मनन ही नहीं करता तो निश्चयात्मक बुद्धि कहां से आएगी? निश्चयात्मक बुद्धि का मतलब क्या हुआ कि जीव ये परमानेंटली समझ जाता है कि मन और देह बंधन का स्वरूप है, मन और देह पांच विकारों का स्वरूप है, इससे पूरी तरह से 100% मैंने छुटकारा प्राप्त करना है। तो बताइए जीव के पास जीने के लिए ईश्वर के अलावा क्या बचा? इस जीव के पास यदि इसके अंदर विवेक आ गया है तो ईश्वर के अलावा जीने का आधार क्या बचा इसका? तो ऐसा जीव ईश्वर परायण होकर जीता है शारीरिक जीवन। तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, अंदर से पक्का निश्चय होता है इसका कि जिनसे भी मेरा संबंध है इंक्लूडिंग माई सेल्फ, میری دیہ بھی اس کے حکم میں ہی چل رہی ہے. ان کے جیون میں جو دکھ آئیں گے جو سکھ آئیں گے, جو کر پائیں گے جو نہیں کر پائیں گے, وہ پربھو کے آدھین ہے. یہ نشچے اس کے اندر گہرا ہوتا ہے. اور یہ جو نقلی نشچے ہے کہ میرے کرنے سے ہوگا, یہ نشچے اس کا ٹوٹ جاتا ہے. تو ایسا جیو ہی پریم سے, سو کہتے ہیں کہ دل سے چاہ کر ایشور کی یاد کرتا ہے. یہ سمرن کے پرتی لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے, ذرا وچار کر کے دیکھو. جس کا جیون سمرن ہے وہ سمرن کے پرتی لاپرواہ ہو سکتا ہے؟ اور جس کا جیون سانساری جیون ہے وہ سمرن کے پرتی لاپرواہ ہے. وہ ساری زندگی کمپلین کرتا رہے گا, سمرن بہت کرتا ہوں میں, من نہیں لگتا میرا, لگے کہاں سے, وویک ہی نہیں. جس چیز کی جتنی پراپتی کی دڑ اچھا ہوتی ہے, کہتے کہ اس سے اتنا ہی پریم ہو جاتا ہے. پریم کیا چیز ہے؟ گہری چاہ اس کو پراپت کرنے کی, اسی کا نام پریم ہے. تو وویک آپ کے اندر یہ اسٹرانگ ہوا تو یہ سارا جو بربادی کا چھیتر ہے, من تن اور سنسار, اس کے پرتی راگ ہوگا میرے اندر یا اس کے پرتی ویراگیہ ہوگا, یا وچار کر کے دیکھ. تو اسی لیے مہاراج جی نے جب یوگ مارگ بودھ چیپٹر لکھا تو پہلے بھوگواد استھتی لکھا کہ من دیہ سنسار کا سوروپ کیا ہے. کیوں ستپرش بار بار کہہ رہے ہیں, سارے ستپرش ایک سر سے کہہ رہے ہیں سنسار دکھ روپ ہے. تو سب سے پہلے گرو آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ تیری ساری کی ساری رچنا اور تیرے سارے کے سارے بھوگ, سارا کا سارا سنساری جیون وکار روپ ہے, دکھ روپ ہے. سب سے پہلے گرو یہی سکھا رہا ہے. اس کے بعد وہ شدھ وویک کی بات کر رہا ہے. اس کے لیے وہ اتنا ہی کہہ رہا ہے, کیوں دکھ روپ ہے, یہ پریورتنشیل اور ناشوان ہے. سمپورن پرکرتی, سمپورن برہمانڈ, کچھ نہیں بچتا اس کے اندر. تو جہاں تک تیری عقل پہنچتی ہے, جہاں تک تیری اندریاں پہنچتی ہیں, ہر چیز پریورتنشیل اور ناشوان ہے. جب تیری بدھی کا بھی یہ نرنے ہو جاتا ہے یہ پریورتنشیل اور ناشوان ہے, تب تو اس میں دکھ دیکھے گا یا سکھ دیکھے گا؟ یہ جو استھتی ہے میری, اس کو کہتے ہیں شدھ وویک. جو وویکوان ہوتا ہے اس کی سمجھ یہاں کھڑی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ مہاجی کہہ رہے ہیں شدھ ویراگ کی بات. شدھ ویراگ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی سکھ کے سادھن ہیں تیرے اس دیہ کے اندر اور سنسار کے اندر, جتنے بھی سکھ کے سادھن, یہ سارے کے سارے سکھ کے سادھن پانچ وکار سے یکت ہیں, پانچ وکار کے انترگت ہی ہیں, اس سے لیش ماتر بھی اوپر نہیں ہے. تیری 100% جو سانسارک لائف ہے یہ پانچ وکار سے یکت ہے. تو اب بتائیے, میرے بچے چاہے سانسارک جیون جیئیں, چاہے میں سانسارک جیون جیوں, چاہے میرے دیشواسی سانسارک جیون جیئیں, تو وہ کیا کریں گے؟ پانچ وکاروں کا بھوگی تو کریں گے, تو ان کے اندر کیا بڑھے گا؟ کام کرودھ لو مو اہنکاری تو بڑھے گا, اس کے انے کچھ بڑھے گا ان کے اندر. جس کا بھوگ کرو گے اسی کے سنسکار بنیں گے, وہی بڑھے گا. تو جب سارا جیون پانچ وکار سے یکت ہے तो ये प्रेम करने की चीज है या त्यागने की चीज है? तो जब इसका समझ में आती है मुझे इसकी साइंस, तब इसका निश्चय में क्या आता है? वैराग्य। इसको महाराज जी शुद्ध वैराग्य कह रहे हैं। जिसकी मानसिक स्थिति यह होती है, जो उसको बर्बादी समझता है, क्योंकि ये पांच विकार को ही देने वाली चीज है, अन्य कुछ है ही नहीं, सार है ही नहीं इसमें, तो फिर जिंदगी बर्बाद कौन करना चाहेगा समझदार व्यक्ति? इसलिए उसके अंदर शुद्ध वैराग्य होता है, इसमें राग नहीं होता। तो जब उसके अंदर विवेक और वैराग्य, ये दो चीजें दृढ़ होती हैं, तब महाराज जी लिखते हैं शुद्ध निधिध्यास, तब होता है प्योर मेडिटेशन। अब हम सोच लें, पहले हम जो ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारा मन सिमरन में कैसे लगे, मन की परेशानी कैसे दूर हो, तो आपके अंदर ना शुद्ध विवेक है ना शुद्ध वैराग्य है। तो जब तक ये आपकी तैयारी नहीं है, आपके अंदर कभी भी मन की आसक्ति, तन की आसक्ति दूर नहीं हो सकती, ना ये मन कभी सिमरन में लग सकता है। करते रहिए आप, 6-6 घंटे रोज सिमरन कर ली, इसीलिए ये होश हमारे अंदर चाहिए। अब बताइए मुझे, बिना गहरे मनन के ये होश बना रहेगा आपके अंदर? आप जो वहम पाले बैठे हो, मैं बड़ा बुद्धिमान आदमी हूं और बहुत लोगों को समझा सकता हूं, लेकिन ये तो देखें, मैंने अपनी स्थिति तो देखें पहले। शर्म तो अपने ऊपर आपको तब आएगी जब सोचोगे अपने बारे में, मेरी स्थिति क्या है, मेरी बुद्धि की हालत क्या है, किस बेहोशी की हालत में जीवन जी रहा हूं। तो इसीलिए यदि वास्तव में आप इस बीमारी को दूर करने के प्रति गंभीर हैं, आप चाहते हैं दिल से मुझे ईश्वर की याद आए, तो ये विज्ञान आपके दिमाग में हर वक्त क्लियर होना चाहिए। अब सिमरन में यही चीज सहायता करती है, याद रखिए, यही विचार सहायता करता है आपकी। कब तक मन से लड़ोगे आप? सिमरन किया आपने, चलो कुछ अच्छे संस्कार बने आपके अंदर, लेकिन संसार जिस आप शौक से पकड़े बैठे हो ना, इसको लक्ष्य बनाए बैठे हो, वो संस्कार तो आपको बढ़ रहे हैं, पहले से ज्यादा गहरे हो रहे हैं। जितनी सफाई नहीं कर पा रहा उससे ज्यादा गंदगी बढ़ रही है आपको। तो इसीलिए ईमानदार व्यक्ति के अंदर कर्तापन बड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसके अंदर एक और अहंकार आ गया कि मैं ईमानदार हूं, और ये तो मैं देह को ही पकड़ रही है, और किसको पकड़ रही है? तो देह के प्रति मोह तरह ईमानदारी करके और गहरा हो रहा, ये होश ही नहीं इस बात का। तो इसलिए तेरे अच्छे कर्म भी तेरा पतन करते हैं, इस बात का पता नहीं है तुमको। बुराई करने वाले को तो पता होता है मैं बुरा आदमी हूं, अच्छाई करने वाले को पता नहीं होता कि मैं भी बुरा आदमी हूं। तो अध्यात्म को जब गहराई से समझेगा तब पता लगेगा, यारे मैं कर क्या रहा हूं। तो इसीलिए महाजी कहा करते थे, प्रेमी ईश्वर को पाना क्या है? जीते जी मरना है। तो जीते जी मरना क्या है? ये कि मन और देह के प्रति आसक्ति का टूटना ही जीते जी मरना है, लेकिन वास्तव में यही जीवन है, यही जीवन है, क्योंकि तू मौत से बच रहा है, जीवन से जुड़ रहा है। जीवन ईश्वर के अंदर है या नहीं है? तेरी देह ईश्वर के कारण चल रही है या तेरे कारण चल रही है? तो जीवन ईश्वर के अंतर्गत है, और तू जीना चाहता है और जीवन चाहता है। ईश्वर के अंदर केवल जीवन ही नहीं है, वो जान रूपी नहीं है, वो आनंद रूप भी है, वो शांति रूप भी है। तो सब वही चाहता है जो ईश्वर के पास है, इसलिए पूरा ईश्वर भाव को चल, और जो भी बुद्धि की चतुराई, बुद्धि की होशियारी तुझको दी गई है, कोशिश कर। तो कोशिश करना तेरा कर्तव्य है, तेरा फर्ज है, निष्काम रूप में। आशा मत रख, हो सकता है तुम जितनी मेहनत करे उसमें से 5% सफलता मिले, 95% फेल हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं, तो मालिक नहीं है किसी का, अपने बच्चों का भी मालिक नहीं है तू। उनके पति तेरे अंदर कर्तव्य बोध होना चाहिए, मालिक मत बन तो, जो बनना है ईश्वर बनाएगा उनको। तेरे अंदर बस ये ठंडक रहेगी, जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने पालन कर लिया, बस यहां तक तेरा संबंध है बस लोगों से, कि जो तेरा कर्तव्य वो तूने पालन कर लिया, इसके आगे तेरा कोई संबंध नहीं। तू जीव है और तेरा संबंध केवल ईश्वर से, याद रख, तेरा संबंध केवल ईश्वर से है, बाकी सारा चीज जहां पर जहां तेरा संबंध है सब जड़ है, सब जड़ है। तो अपनी बुद्धि की इस जड़ता को निकाल, तब देख तू जब सिमरन करने बैठेगा कैसा तेरा ध्यान लगता है उसमें, कितने प्रेम से ईश्वर की याद आएगी। तो इसीलिए मुझको यहां 40 साल आते हुए हो गए, लेकिन योग मार्ग बोध चैप्टर मैं आज भी पढ़ता हूं, अभी भी 20 दिन मैंने योग मार्ग बोध ही पढ़ा, क्योंकि वही हालत बनी रहनी चाहिए ना बुद्धि की परमानेंट, और वो रहती नहीं है हम सब जानते हैं। इसलिए हर वक्त वही चीज बनी रहे, वो आप अपनी स्थिति को जानते हो, और जैसे जैसे वो आपके अंदर वो स्थिति बनेगी, आप देखोगे सिमरन में प्रेम कैसे बढ़ेगा आपका, और जैसे जैसे वो स्थिति गायब होगी सिमरन में प्रेम कैसे घटेगा आपका, आप खुद पता लगेगा। तो इसीलिए महाराज जी ने अंत में आकर जो संत रविदास क्लोज करी, संतरेपन उनका आखिरी यहां पे एकांतवास था केला घाट में, तो योग मार्ग बोध चैप्टर लिख कर गए वो, बस ये अंतिम डोज है, जिसने इस डोज को गंभीरता से जीवन में अपनाया उसका जीवन सफल है, उसकी भक्ति जरूर हो। तो ये मार्ग है जो आपके मन को शांत करेगा, मन को एकाग्र करेगा समझने, और दोषों से आपको दूर करेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वभूतानां।